ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को आज मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि आयोग के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे यूनियनों के नेताओं ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। इस फैसले से 45 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इस टीएलपी परियोजना से इसरो की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा में बुनियादी ढांचे की स्थापना पर बल मिलेगा। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना से भारत के अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेडेक्स मिशन के तहत दो उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला चौथा देश बन गया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ने डिजिटल कौशल के लिए भारत को कनाडा और जर्मनी से आगे दूसरे स्थान पर रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने देश के युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करके उन्हें मजबूत बनाने पर काम किया है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और आय अर्जित कर सकें। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शान मुगरत्नम ने आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। सिंगापुर के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। कांग्रेस ने भी आज 5 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने शेष 2 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 एक दिन और एक ही पाली में पेन और पेपर मोड ओएमआर आधारित में आयोजित की जाएगी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आज संस्कृति का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव अगले महीने 24 फरवरी तक चलेगा। इस बीच 10 देशों से आए 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने भूटान को हरा दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने भूटान को 71-34 से हरा दिया। इससे पहले आज एक अन्य मैच में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 120 से पराजित किया। हालांकि भारतीय पुरुष और महिला टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।